परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
Thank you. मित्र प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ उन मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन करके अपनी गवाहियों के पत्र के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं। और इसके साथ मैं उन मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से नए नियम की पुस्तक उसमें से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है, परमेश्वर दयावंत है और परमेश्वर सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि सचमुच में आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। विशेष करके हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपने आशीष प्रदान कीजिए जो निराश है, दुखी है, चिंता में है, बीमारी अवस्था में है, किसी प्रकार के पारिवारिक और व्यक्तिगत तनाव में है। पिताजी, आप हरेक को अपने शांति और चंगाई प्रदान कीजिए। इस समय हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर प्रेम करता है, जी हाँ, दया दर्शाता है और अनुग्रह प्रदान करता है और यहाँ तक करता है कि हमारा उद्धार हो। यही नहीं, वह हर प्रकार से सांत्वना देता है और उसने एक सहायक भी हमारे लिए रखा है। तो आइए आप मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके एक अध्याय और उसके चार पद को निकाले। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री एक अध्याय उसका चार पद लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। ध्यान दीजिए, यह एक अद्भुत बात है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी सब परेशानियों में हमें सांत्वना देता है। जी हाँ, धूप काल में जब कोई हमारे पेट थपथपाए तब मन को शांति मिलती है, वह एक बात है। परंतु मेरे मित्रों, सच्ची सांत्वना वह है जब हमारा मन संकटों में शांति पाए। हम देखेंगे कि पौलुस ने अपने संकटों में ऐसी ही सांत्वना पाई थी। हमें अपने जीवन की परिस्थितियों में गहन आवश्यकता अवलोकन, जीवन की घोर निराशा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आश्वासन की आवश्यकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मसीही विश्वास मात्र एक कल्पना है, यह मात्र एक दीक्षा है, एक अंगीकार है, यह एक प्रकार का वस्त्र है जो विशेष अवसर पर पहना जाता है, फिर वह अनौपचारिक हो जाता है। यह एक निष्क्रिय अनुष्ठान है और अर्थहीन शब्दावली है। मेरे मित्रों, मसीही विश्वास का प्रमाण है कि वह चाल चलन में कैसा है। यह प्रेरित पौलुस की कल्पना नहीं थी। आइए आप मेरे साथ पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 1:5-6 में लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हम देखेंगे कि पौलुस अपने जीवन में आए संकट और वर्तमान संकटों के बारे में सविस्तार चर्चा करता है और उन कष्टों के मध्य प्राप्त परमेश्वर की सांत्वना का भी अंगीकार करता है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 1:7-10 में हम पढ़ते हैं, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें। वरन परमेश्वर का जो मरी हुओं में से जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे भी बचाता रहेगा। यह एक महान बात है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर हम पर संकट या रोग क्यों आने देता है। पौलुस कहता है कि वह इतना बीमार हो गया था कि मरने पर था, और सच तो यह है कि उसे आंतरिक मृत्यु दंड मिला था। वह ऐसा रोगग्रस्त हुआ कि डॉक्टर ने उसके बचने की आशा को छोड़ दिया था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह उस घटना का संदर्भ है जब इफिसुस में पौलुस पर भीड़ ने आक्रमण किया था। वे पौलुस को टुकड़े टुकड़े कर देते कि वह शहीद हो जाता। वह किसी भी एक घटना की चर्चा कर रहा था। दोनों ही स्थितियां ऐसी ही थी कि वह शहीद होता, परंतु पौलुस कहता है कि मृतकों को जिलाने वाले परमेश्वर ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। यह एक महान बात है और आज हमारे लिए व्यवहारिक हो यह आवश्यक है। मेरे मित्रों, मैं कहूंगा कि परमेश्वर विश्वासियों को कष्ट में पड़ने देता है, और उसमें उसका एक उद्देश्य है, एक अद्भुत योजना है। वह चाहता है कि इनके द्वारा विश्वासियों की भलाई हो। उसकी इच्छा में यह एक अच्छे उद्देश्य के निमित्त हो कि वे एक दूसरे को सांत्वना दें। आपके और मेरे पास जो भी है वह परमेश्वर की दया से है और अन्यों के लाभ के लिए है। आपके पास कुछ भी हो, परमेश्वर ने वह आपको मनुष्यों के साथ बांटने के लिए दिया है। उसने अपनी दया के कारण आपको दिया है। यदि आपके पास स्वास्थ्य, धन, यौवन, प्रतिभा या वरदान है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे मनुष्यों में बांटें। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दया से प्राप्त है, और एक मिनट कष्ट भी। यदि आप मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं तो उसे परमेश्वर ने अनुमति दी है। डॉक्टर हेनरी आयरनसाइड अपने एक मित्र की कहानी सुनाते हैं जो वियना ऑस्ट्रेलिया में पर्यटक बस में यात्रा कर रहा था कि मार्ग में भेड़ों के आ जाने से अवरोधक उत्पन्न हो गया। उनके मित्र के पास बैठा यात्री इससे रुष्ट हो गया क्योंकि भेड़ों को हांकने वाले केवल दो ही कुत्ते थे। अतः उनके इस विश्वासी मित्र ने उस कुपित व्यक्ति से पूछा, क्या आप इन दोनों कुत्तों के नाम जानते हैं? उसने कहा, क्यों नहीं, मैं नहीं जानता। क्या आप उनके नाम जानते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ। उनके क्या नाम है? उनके मित्र ने कहा, एक का नाम भलाई है और दूसरे का नाम करुणा है। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम? उसने कहा, मैं बताता हूँ, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मेरे प्रियो, आपके विचार में संभवतः भलाई और करुणा दो भौंकने वाले कुत्ते नहीं जो आपको दाएं बाएं भटकने से रोकते हैं, परंतु यह सच है कि परमेश्वर की करुणा या दया हमें सीधे और सक्रिय मार्ग पर भी चलने में मदद करती है और वह परीक्षाओं और कष्टों एवं उद्देश्य में काम में लेता है। वह दया का पिता है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसे कैंसर है और उसमें अनेक पुनरावर्तन दिखाई दिए, और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर ने उसे कहा कि उसमें आशा की कोई भी किरण नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसे रोग मुक्त प्रदान कर दिया। यह अति अद्भुत बात है। वह पिशाच कभी भी मुझे या आपको दबोच सकता था, परंतु मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उससे मुझे और आपको मुक्ति दिलाएगा। जी हाँ, मुझे एक व्यक्ति का पत्र प्राप्त हुआ जो उग्र स्वभाव का प्रतीत होता था। उसने लिखा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आप निरोग हो जाएंगे, अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचने लगा कि रोगी तो मैं हूँ, परमेश्वर ने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तो केवल परमेश्वर की बात जो रहा हूँ। मैं पौलुस के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह मुझे मुक्ति दिलाएगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर के समक्ष अभिमानी नहीं हो सकते। हमें दीनता का आचरण करना है। पौलुस दीन था और विश्वास के साथ कह सकता था, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, और वह कह सकता था, वह मुझे इस पल भी बचा रहा है। और अभिमान किए बिना वह कहता है, हम विश्वास करते हैं कि वह हमें बचाएगा भी। पौलुस जानता तो नहीं था कि वह बचाएगा, परंतु वह विश्वास करता था कि परमेश्वर बचाएगा। इस तथ्य के आधार पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर उसे उस युग में सुसमाचार प्रचार की अनुमति दे रहा था। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से प्रार्थना का निवेदन करता है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि मैंने प्रार्थना का निवेदन किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग वर्षों से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आपके लिए भी हो सकता है कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हम पर कष्ट आने देता है कि हम अन्यों को ढाढ़स बंधाएं। हमारे कष्ट मनुष्यों के लाभ के लिए हैं कि हम कष्ट उठाने वालों को ढाढ़स बंधाएं। यह एक अद्भुत बात है कि मेरा रोग एक अनुभव है, अन्यों के लिए सांत्वना का कारण सिद्ध हुआ। परमेश्वर हमें कष्ट उठाने देता है कि हम मनुष्यों को सांत्वना दे पाएं। एक बार फिर सुने कि पौलुस क्या कहता है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारे सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। मेरे मित्रों, आपको अपनी हिंदी की पुस्तक में एक कहानी स्मरण होगी कि एक बार सूर्य और पवन में विवाद हो गया कि कौन अधिक शक्तिशाली है। मार्ग में एक मनुष्य जा रहा था। पवन ने कहा, मैं इसका कोट उतरवा सकता हूँ। अतः पवन प्रवाह आरंभ हुआ और उसकी गति बढ़ती गई। उसकी गति इतनी अधिक हो गई कि वह मनुष्य खड़ा नहीं रह पा रहा था। पवन की गति जितना अधिक बढ़ी उतना ही अधिक कसकर उस व्यक्ति ने अपने कोट को पकड़ लिया। तब सूर्य ने कहा, अब मेरी बारी है। सूर्य चमकने लगा और गर्मी बढ़ गई। गर्मी के कारण उस मनुष्य ने अपना कोट उतार दिया। पवन तो कर ही नहीं पाया, परंतु सूर्य ने कर दिखाया। मित्रों, विरोध की आंधी हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है। जब हवा प्रचंड हो जाती है तब हम अपने पिता परमेश्वर के निकट आ जाते हैं और वह हमें सांत्वना देता है, परंतु यदि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है तो हम संकटकालीन स्थिति में हैं। सूर्य चमकता है तो विश्वासी निश्चिंत हो जाते हैं। वे व्यवहारिक धार्मिकता का बागा उतार देते हैं और संसार से समझौता कर लेते हैं। आज अनेक विश्वासियों ने ऐसा ही कर लिया है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है कि वह अपने जीवन की गवाही के कारण आनंद मना सकता था। वह स्पष्ट कहता है कि यह शारीरिक ज्ञान से नहीं था। मेरे मित्रों, हमारा जीवन ज्ञान के कारण संसार में गवाही नहीं बनता है। यदि हम परमेश्वर के गवाह हैं तो वह इसलिए कि हमारा जीवन पवित्रता और सच्चाई से पूर्ण है। पौलुस कहता है परमेश्वर के अनुग्रह से कष्टों द्वारा उसके जीवन में यह उत्पन्न हुआ। अतः कष्ट परमेश्वर की दया है और वे हमारे जीवन में गुण उत्पन्न करते हैं जिन्हें मनुष्यों में बांटा जा सकता है। जब मैं अपने रोग के बारे में सोचता हूँ या अस्पताल में लोगों से जब मिलने के लिए जाता हूँ तो मुझे एक कविता याद आती है, मुझे निश्चल की आवश्यकता है, मुझे निश्चलता चाहिए तो उसने मुझे किया अलग, छाया में जहाँ हम भरोसा रख पाए, शोर शराबा से अलग, जहाँ पूरा दिन मैं भाग दौड़ और चिंता में था जब स्वस्थ था, मुझे निश्चलता ही चाहिए कि यद्यपि मैंने विद्रोह किया परंतु शनय शनय उदारता पूर्वक उठाया उसने मेरा क्रूस, और मधुर वाणी में आत्मिकता सुनाई, देह तो दुर्बल थी आत्मा ने लिया पंख, सक्रिय और हर्षित ऊंचाइयां नहीं सोची, वहां उसका महान प्रेम मुझे ले चला, मुझे निश्चलता चाहिए थी बिस्तर बंदी गृह नहीं, आशीषों की सुंदर वादी था वह, समृद्ध का स्थान यीशु की शरण, मुझे निश्चलता चाहिए थी अतः उसने मुझे किया अलग। मेरे मित्रों, यदि आज आप रोग शया पर हैं और यह परमेश्वर की इच्छा है तो वह उस मंच से अधिक महान होगा जिस पर प्रचारक खड़े होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय उसके 13 से 15 पद में हम पढ़ते हैं, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। पौलुस कहता है, क्या मैं जब तुम्हारे पास पहले आया था तो क्या आशीष का कारण नहीं था? अब मैं दूसरी बार आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए आशीष का कारण ही बना रहना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं आगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ, कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ। यहाँ पर पौलुस की आशा थी कि वह कुरिन्थ जाएगा, परंतु अब तक वह वहाँ नहीं गया था। कुरिन्थ में उसके विरोधी भी थे जो कहते थे कि वह जो कहता है वह करता नहीं, वे उस पर अविश्वास का दोष लगा रहे थे, और यही कारण है कि पौलुस उन्हें कहता है कि उसके मन में सच्चाई है। वह कहता है कि उसकी हाँ हाँ होती है और उसका नहीं नहीं होता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वासियों में यही सद्गुण होना है, उन्हें भेंट के समय और व्यवस्था में ढील नहीं देना चाहिए। हमें वचन के पक्के विश्वासी स्त्री और पुरुष की आवश्यकता है। 2 कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते हैं। जी हाँ, पौलुस ने यह नहीं कहा मैं आऊंगा, उसके बाद क्षमा मांग ली कि मैं नहीं आ सकता, जैसे कि वह दुविधा में हो। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की अगुवाई में था, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। हम 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 19 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। उसका सुसमाचार महिमामय था, संदेह रहित सच्चा था, वह हाँ था। सुसमाचार हमारे लिए परमेश्वर द्वारा किया गया काम है। यह शुभ संदेश है। हमारे पास विश्वास योग्य परमेश्वर ही नहीं, एक निश्चित प्रभु यीशु भी है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ, मसीह में हर एक बात निश्चित है। परमेश्वर आपके लिए भलाई चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप दुख में रहें। वह नहीं चाहता कि आप बुराई में अपने जीवन को बिताएं। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को लाना चाहता है, उन्हें जोड़ना चाहता है, ताकि आप उसे और नजदीकी से जान लें। पौलुस अपनी कठिनाइयों में भी परमेश्वर के उन योजनाओं को समझ गया, उसने उसे ग्रहण किया और परमेश्वर को धन्य कहा। क्या आज आप इसे मानने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आपके जीवन में भी उन आशीषों को देना चाहता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु के वचन में बने रहें, उससे भय रखें और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
पापों से हमको बचाता है वो, अपने पापों से तुम भी बचो। Thank you.